गण के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है। माया को तुम्हें हराना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो।
ओम शांति। आज का टॉपिक है, एक चुप हजार को हराए। एक चुप हजार को हराए, अर्थात मनुष्य जब चुप हो जाता है तो उनके सामने जो भी आते हैं, जैसी भी परिस्थितियां आती है, तो सारी परिस्थितियां भी हार जाती है और वो जीत जाता है। बाबा ने हमको भी बताया है कि छिप बाबा ने बताया, सबसे पहला पाठ है हमारा स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है शांत रहना। तो हमारा घर भी शांति धाम है और बाबा भी शांति का सागर है। शांति ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो शांति यानी चुप रहना। जो जितनी भी आज तक इन्वेंशन हुई है वो साइंस से, साइलेंस से हुई है, जितनी भी इन्वेंशन हुई है। और जितने जितना हम शांत रहते हैं उतना, आपने देखा होगा जो पढ़ाई करते हैं और गार्डन में जाते हैं, एकांत जगह पे जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और बहुत शांत रहते हैं। तो शांत रहना, चुप रहना, उससे हमारी अंदर की शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। यहां भी जब दादी थी, दादी तो एक सोमवार को मौन रहता था, हर सोमवार को मौन रहता था। और 18 जनवरी में भी लिखते हैं कि जितना हो सके उतना मौन रहो, शांत रहो। तो आत्मा का स्वधर्म तो शांति है ही, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो बोलना भी पड़ता है। बाबा कई बार कहता है कि सामने वाला अगर कुछ बोलता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, तो चुप रहना अच्छा है, क्योंकि बात आगे बढ़ ना जाए, माहौल खराब ना हो जाए। इसलिए बाबा कई बार कहता है कि अगर कोई क्रोध करता है तो आप उसके ऊपर फूल बरसाओ। फूल बरसाने की बात नहीं है, लेकिन चुप रहना है, क्योंकि चुप रहने से सामने वाला भी चुप हो जाता है और बातें आगे बढ़ती नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि हम चुप हो जाएंगे तो क्या होगा, घर का माहौल होगा, सेंटर का माहौल होगा, तो वो भी शांत हो जाएगा। कहते हैं कि खुदा को भी शक्ति नहीं थी बयान में, इसलिए तो हड्डी नहीं दी जबान में। बाबा भी हम देखते हैं, व्यक्त बाप दादा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। कभी कभी बाबा की बातें, शिक्षा ऐसी होती है जो दिल में लग जाती है। बाबा इतनी अच्छी रीति से ऐसी बातें, शिक्षाएं देते हैं। और आपने देखा होगा कि बाबा का जो मुख होता है मुस्कुराता ही होता है, और शिक्षाएं भी, कड़ी कड़ी शिक्षाएं भी दे देते हैं। बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है बताते हैं। तो चुप रहने में भलाई भी है, क्योंकि कोई एक शब्द भी हम गलत जगह पर बोल देते हैं तो उसका हमें बहुत ही चुकतु करना पड़ता है, भारी बातें आ जाती हमारे सामने। इसलिए महाभारत की कहानी भी है, एक शब्द ने पूरा महाभारत बना दिया। तो कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अगर वो हम सीख जाएं, क्योंकि मौन रहना तो आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी संयमित बोलना उससे ज्यादा सरल है। क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि जब भी एक भाई था, वो अहमदाबाद में ही था, वो मौन रहता था, इतना मौन रहा, इतना मौन कि उसकी जबान ही बिल्कुल जैसे बोलना ही भूल गया, वो मौन रहता था और बोलता ही नहीं था, जरा भी नहीं बोलता था। तो सब अच्छा तो लगता था, क्योंकि मौन रहता था तो मुस्कुराता भी था। तो लेकिन वो मौन रहते रहते, क्योंकि मौन तो रहते हैं, लेकिन अंदर का मौन और बाहर का मौन फर्क पड़ता है ना। अगर हम चुप रहते हैं, लेकिन आज तक हमने बोला है, हमने जो भी अभिव्यक्ति की है, लेकिन जब बोलना बंद हो जाता है तो कहीं तो लिख लिख के देते हैं, सामने वाले परेशान हो जाते हैं, कुछ भी होगा लिख के देगा या इशारा बहुत करेगा। अभी इशारा करना भी तो चुप रहना नहीं है, है ना। और 15 दिन अगर उसने 2-4 दिन मौन रहा ना, तो 2-4 दिन की बातें है ना उसकी नोट होती है, और जैसे ही उसका मुख खोलने लगा ना तो सारी बातें बताएंगे। तो वो तो चुप रहना नहीं हुआ ना। तो जब भी हम बाबा के बनते हैं तभी भी कैसी कैसी बातें सामने आ जाती है, कि परिस्थितियां ऐसी आती है, घर में अगर एक अकेला ही चलता है और बहुत माता पिता का विरोध हो जाता है तो उसको युक्ति से चलना पड़ता, चुप रहना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, वो जो करता है करता रहे, और अगर बोलता रहे तो बहुत ही परेशानियां, और ही परेशानियां आ जाती है। नहीं, महाभारत का युद्ध में एक और भी बात थी कि भीष्म पिता जब बाण संहिता पर सोए हुए थे तो सब मिलने आए थे, श्री कृष्ण भी मिलने आए थे, तो भीष्म पिता मह की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी परेशानियां, मेरी मजबूरियां वो आपके सिवाय और कौन जान सकता है अच्छी रीति से, तो और कोई नहीं जानता है कितनी परेशानी आई, क्योंकि ये सारे तो पीछे पीछे आए थे। वो कहते हैं कि मैंने जान लिया, वही काफी नहीं है क्या। तो बाबा भी कहता है ना कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर बाबा से वफादार है, बाबा की सुन्नत पर चलते हैं, बाबा की हर बात को मानते हैं, तो अगर कोई कुछ बोलता है तो चुप रहना ही अच्छा होता है। कोई जब भी पुरुषार्थ करते हैं तो कोई कहते हैं देखो ये आ गए, तो कहने का मतलब कि उसी समय अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही बातें बढ़ जाती हैं। एक कहानी है कि वो तो सबने सुनी है कि एक घर में बहुत झगड़ा होता था, रोज ही झगड़ा होता था, पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता था। तो बहुत तंग हो गई वो बहन जी, और बाजू वाली एक बूढ़ी माता थी, उसको उसने बताई अपनी वेदना कि बहुत ही झगड़ा होता है, क्या करें। बोले मैं आपको एक दवाई देता हूँ, और दवाई है जब भी झगड़ा हो ना उसके पहले 5 मिनट पहले आपको लगता है कि हो रहा है, होने वाला है, तब जब तक पूरा ना हो जाए तब तक ये दवाई मुख में रखना। तो उसने बोला ठीक है। तो पहले दिन बहुत खुश हो गई है, तो क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं, शुरू तो हुआ लेकिन बोला नहीं। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया और खुश हो गई कि दवाई तो बहुत अच्छी काम कर रही है। 15 दिन बहुत ही अच्छी रीति से वो झगड़ा हुआ नहीं, तो उसका पति ने चुप हो गया, फिर तो लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। लेकिन उसने बताया कि आपने ऐसी कौन सी दवाई दी, क्योंकि ऐसी दवाई हमको चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी कभी बहुत ऐसा होता है। तो उसने बोले मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने आपको ऐसी दवाई दी थी, तो एक गोली दी थी, तो जिससे क्या होता था, खामू पड़ी थी तो बोल नहीं सकती थी, तो इसलिए बोला कि ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एक पत्थर जैसी गोली दी थी और कुछ नहीं था। तो चुप रहने की युक्ति बताई। एक बार हम सेंटर में रहते थे राजीव भवन में, तो बहुत नए नए एक कपल आए थे, तो 10-15 दिन हो गया, एक मास हो गया, तो उनके वो 2 मंजिल के मकान था ना, उसमें नीचे जो उनके परिवार वाले रहते थे और वो 2 ऊपर रहते थे, तो लड़ाई झगड़ा तो होता है, तो इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि वो मोहल्ले के लोग बहुत ही मतलब कि आ जाते थे, क्योंकि लोगों को तो जरा भी देखते हैं तो बहुत इकट्ठे हो गए थे, इकट्ठे हो जाते थे। तो नीचे वाले जो थे ना, उनके परिवार वाले, उनको लगा कि ये बहुत कितने 1-2 माह से जाते हैं, तो उनको मिलना चाहिए। तो वो आए सेंटर पर, तो मुझे दीदी ने बोला देखो ये आए हैं। मैंने बोला किसको मिलना है, तो कहते हैं कि अब आपके बड़ी दीदी को मिलना है। तो दीदी ने बोला बुला उसको, तो उसी समय मैं बाजू में बैठती थी, तो उसको बोला कि क्या है, बोला बहुत लड़ाई झगड़ा हमारे जो होते हैं ऊपर, जो आपके स्टूडेंट है यहाँ आते रहते हैं, 2-4 मास हो गया लेकिन गुस्सा बंद नहीं हुआ, लड़ाई बहुत करते हैं। तो बोला ठीक है, लेकिन फिर दूसरी बार वो जब आए, तभी दीदी ने दोनों को में से एक भाई को बुलाया, दूसरी बहन थी उसको बोला तब ऊपर जाओ आपको मूली सुनाएंगे। तो भाई को पूछा कि क्यों आप मतलब कि क्या होता है, तकलीफ क्या है, तो बोला उसने है ना बहन की 25 गलतियां बताई, 25 गलतियां। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन आप एक काम करना, क्योंकि आपको साथ में तो रहना है ना, आप झगड़ा होता है डाइवर्स चाहिए, तो नहीं नहीं हमको डाइवर्स नहीं चाहिए। तो कहता है तो फिर साथ में रहना है ना, तो प्रेम से रहना है, बोला ठीक। तो आप एक काम करना, आप जब भी बोलना शुरू करें तब चुप हो जाना, भले अच्छी बात हो, किसी की बात हो, बच्चों की बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन चुप हो जाना, बोलना नहीं। उसके बाद जब अच्छा उसका मूड हो ना, तभी थोड़ा क्लियर करने का। तो कहते अच्छा ठीक है, आप 15 दिन में प्रयोग करना, ठीक है। फिर वो भाई को बोला कि आप ऊपर जरा बहन जी आपको मुरली सुनाएंगे, तो आप जाओ। तो ये गई और गया, और ये बहन आई, तो बहन को बोला कि झगड़ा क्यों होता है, बोला बच्चों के कारण होता है, कभी कभी उसको मार देते हैं, तो क्या बच्चे तो छोटे होते हैं, सब कुछ बहुत झगड़ा होता है, और फिर बहुत ही तकलीफ बहुत होती है, गुस्सा आता है, लोग देखने आते हैं, सब कुछ बहुत होता है। उसको बोला क्या है तकलीफ, उसने 100 गलतियां बताई छोटी छोटी सारी गलतियां। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप जब एक काम करना है, जब बोलना शुरू करें तो आप चुप हो जाना, और फिर जब ही आप अच्छी मूड में होंगे ना, तब पूछ लेना क्या हुआ है ना लड़ना। तो फिर उन्होंने बोला क्या प्रॉमिस करो कि आप एक जब बोलें जब तब बिल्कुल नहीं बोलने का, तो बोला ठीक है। तो फिर दोनों जब गए, तो दोनों ने बराबर प्रतिज्ञा करवाई थी, दीदी ने अलग अलग करवाई ना, तो भाई को पता नहीं कि बहन को क्या बोला, बहन को पता नहीं भाई को क्या बोला, तो वो दोनों चुप रहे, तो झगड़ा बंद हो गया। तो आसपास वाले परेशान हो गए, नीचे वाले परेशान हो गए, कह रहे रोज ही इतना होता था, आज क्या हो गया उनको। तो ये पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तो हो ही नहीं रहा है। 15 दिन के बाद वो नीचे वाले फिर से गए कि ये तो शांत हो गए हैं, अच्छा हो गया है। तो दीदी ने बोला कि देखो इन, इन कुछ बोला नहीं उनको, बोला शांत हो गए हैं, बराबर है आप, आपने देखा है कि शांत हो गए? बोला हाँ दीदी, पहले तो इतना झगड़ा होता था कि मोहल्ला सारा इकट्ठा हो जाता था, एक दूसरे को मारने आ जाते थे, इतना होता था, बंदी नहीं लोग कितने बीच में पड़ते थे, उसको भी तकलीफ हो जाती थी, ऐसा झगड़ा हो जाता था। तो फिर वो जब सेंटर पे रोज आते थे, रोज दोस्तों मिलता था, लेकिन सब सेंटर में सभी खुश भी हो गए कि दीदी ने कैसी युक्ति बताई। तो फिर वो लोग जब आए तो दीदी ने उनको स्वागत दिया, उम्र स्वागत कहते रहे, बोला नहीं ये स्वागत ले जाओ, क्योंकि अभी फिर से कभी भी आप है ना आप ठीक रहे। बोला हाँ दीदी वो बोलते हैं ना, पहले तो इतना बोलते थे ना, और लेकिन अभी तो मैं इतनी चुप हो जाती हूँ ना तो कुछ होता नहीं। और भाई ने बोला कि हाँ फिर बोलने का रहता ही नहीं है, क्योंकि कितना बोले हम, कोई सामने वाला बोलता ही नहीं था, तो हमारा तो अच्छा रहा और शांतम रहते हैं, अभी भोजन भी अच्छा अच्छा बना के देती है, और तो वो दोनों खुश थे। तो कहने का मतलब कि अगर एक बोलता है और दूसरा चुप हो जाता है तो मतलब कि आगे बात भी नहीं बढ़ती है। और बोला कि अभी आपको ये हमेशा करना है। बोला ठीक है दीदी बहुत अच्छा है, हमें यही रहेंगे। और वो लोग फिर है ना गुस्सा करना धीरे 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 उनके जीवन में से बहुत ही शांत हो गए। वो सबको बताते थे कि एक ही बात से हम हमको मालूम ही नहीं पड़ता था क्या करना चाहिए, इतना गुस्सा, उनको भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, हो जाता था। तो युक्ति बताई थी। और ऐसा कहते हैं कि एक दूसरी कहानी है कि एक मछली मार था ना, वो मतलब कि नदी किनारे बैठा था अपना कांटा लेकर के, तो बहुत सारी मछली आई, बहुत सारी मछलियां आई थी, लेकिन उसके जाल में आई नहीं एक भी, वो जो कांटा लेके बैठा था उसमें फंसी नहीं। आधे घंटे घंटे तक बैठा, मछली याद फंसती नहीं है, फिर वापिस चला गया। दूसरे दिन दूसरे किनारे पर गया, वहां भी मछलियां तो होती थी लेकिन कोई मछली आई नहीं। तो एक भाई था ना, वो दूर से देखता था, क्या तीन चार दिन से बेचारा आता है ना, तो उसके पास नहीं आती मछलियां, फंसती नहीं है। बोला क्या करूं, क्या खिलाऊं घर वालों को, मछली फंसती नहीं है। तो बोला देखो आपको बताऊं, यहाँ एक संत आया था, तो संत आया था ना वो इतना सबको है ना मौन का महत्व समझा रहा था, और इतना अच्छी रीति से बताता था तो लोग चुप हो जाते थे, और बहुत इसका प्रभावशाली इतना ये था कि मछलियां जो थी वो भी चुप रहती थी, इतना प्रभाव उसके ऊपर आ गया था। तो उनको अभ्यास हो गया है ना मुख नहीं खोलने का, तो मुख खोलेगा तो कांटा से बाहर निकलेगी ना, इसलिए। तो उसको आश्चर्य हुआ कि है ऐसा भी, देखो तो चुप रहने से देखो फंसते नहीं है कहीं भी, अब एक शब्द बोल दिया ना तो कैसा हो जाता है, कई शब्द तो ऐसा होता ना जिंदगी भर याद रहता है, क्योंकि मीठे मीठे शब्द होते हैं ना वो भी याद रहता है कि भाई मुझे मिला था, बहन मिली थी, कितना अच्छा बोलते थे। और कभी ऐसे ऐसे जो हमने बोला है तो हमको भी पश्चाताप हो जाता है, और सामने वाले के दिल में से निकलता नहीं है, इतना दर्द हो जाता है। तो ये शब्द जो है ना, हैं नहीं अच्छे भूल नहीं जाते हैं, कोई ने बहुत अच्छा बोला है तो मतलब कि भूलना मुश्किल होता है, जब भी उसको देखेंगे तो बात याद आती है कि ये देखो मुझे कैसा बोला था, ये आता है कि नहीं। और किसी ने बहुत प्यार से बोला वो भी याद आता है, जब भी देखो मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलता है तो व्यक्ति अपने को प्यारा लगता है, उससे बात करने का मन होता है। और जो ऐसे ऐसे जैसे वैसे टॉन्टिंग करते हैं ना, हम उससे बहुत दूर भागते हैं, भाई इसके साथ तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उसको बोलने का ढंग ही नहीं है। तो इस ज्ञान मार्ग में चुप रहना, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि चुप ही रहना है। एक घर में है ना, तो थोड़ा आग लगनी शुरू हुई, तो वो उसने है ना मौन रखा था, उसके साथ एक बच्चा था 2 साल का था, बोलता नहीं था बराबर, वो भी तो आग लगी, अभी क्या करे, मौन रहना है, बराबर लिख करके रखा था कि कभी बोलना नहीं है। वो बच्चा है ना बोल नहीं सकता, लेकिन बोलता था ये हो रहा है, बोला चुप चुप उसको बोलता। कहां से आग लगने लगी, इसकी पत्नी आई, बोला क्या कर रहे हो आप, ऐसा चुप रहना होता है क्या? तो चुप रहना, कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, कैसा बोलना है, क्या बोलना है, अगर हम उसकी थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए ना तो कोई परेशानियां नहीं रहती है जीवन में। इसलिए एक बार क्या हुआ कि चुप रहने के लिए, चुप दो प्रकार का है, एक तो अंदर का है, एक बाहर का है। बाहर का चुप रहना थोड़ा सहज भी है, बाबा ने कहा है कोई कुछ करता है तो आप वहां से खिसक जाओ, लेकिन अंदर तो चलता है कि इसने मुझे ऐसे ऐसा बोला है, अंदर तो रहना है, रहता है। तो जब बाहर का हम चुप रहते हैं तो भी बहुत सारी बातों से बच जाते हैं। कौन सी बातों से बच जाते हैं हम? एक तो हम है ना, तो हमारा किसी से परचिंतन नहीं होता है क्योंकि हम चुप है। दूसरा है, हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि चुप है, किसी ने बोला है हम ऐसा ठीक है कि नहीं तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो जो मुख का मौन है उससे भी बहुत फायदा है क्योंकि मुख का मौन धीरे धीरे हमको अंदर का मौन की तरफ ले जाता है। और अंदर का जो मुख का मौन है लेकिन मन का नहीं होता है तो क्या होता है कि जब चुप रहे ना बहुत सारे संकल्प आते हैं, हमारी स्थिति को बिगाड़ देते हैं। कहीं कुछ हुआ, बोलने का अभ्यास है हमको, साक्षी बन करके हमको अभ्यास नहीं तो क्या होता है, हमको अंदर से बहुत ही संकल्प चलता है लेकिन बोल नहीं सकते हैं। तो मन का मौन भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम, बाबा ने हमको सिखाया है कि जो मन का मौन रहते उसके साथ बाबा ने युक्तियां भी बहुत बताई है, है ना, जो मूल्यियां है, हम पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा फिर वो विचार, मन का जो मौन है उसका सुख हम ले सकते हैं। बाकी लोग अगर मौन रहते हैं तो उसको इतना सुख नहीं मिलता है। अध्ययन करते हैं लेकिन बाबा की युक्तियां ही बहुत अच्छी अच्छी है कि आप देखो बहुत मनन करते रहेंगे तो आपकी, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर मजबूत हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने देखो ड्रिल सिखाई, कितने प्रकार की ड्रिल सिखाई है, बहुत सारी ड्रिल सिखाई है। जो हम शांत रहते हैं तो कोई ना कोई ड्रिल करके हम अपने को पॉजिटिव की तरफ रखते हैं, है ना। दूसरा है कि वो जो चुप रहना अच्छा है और अंदर का मौन तो बहुत ही अच्छा है, उससे हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी बनती है। अव्यक्त बाबा कहते हैं ना, मेरे समान बन जाओ, बाबा कहते हैं ना, बाबा ने कहा है कि दो बाबा को फॉलो करो, एक तो ब्रह्मा बाबा को, उन्होंने जो उच्चारण किया है और आचरण किया है उसको, और शिव बाबा को निराकारी रीति से अभ्यास करो। लेकिन शिव बाबा भी अव्यक्त वाणी में बहुत कुछ सिखाया है। और अभी ड्रिल का इतना इम्पोर्टेंस है कि हम जब जितनी भी ड्रिल्स करते हैं तो हमारा समय भी पास हो जाता है। हमें समय बहुत ही कम पड़ता है कभी कभी कि ये एक्सरसाइज बाकी रही, ये एक्सरसाइज बाकी रही, तो मन का मौन भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जितना जितना मनन करते रहेंगे उतने उतने हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। और हमारी ये जो एक बाबा ने कहा ना कि आपको कर्मातीत तो बनना ही है, कर्म करते हुए, कर्म कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए हमारे कर्मेंद्रियों से हम अतीत हो जाए, वो अभ्यास करना है। अभी एक बार क्या हुआ कि एक राजा था ना, तो गुरु के पास गया, उनको बोला कि आप है ना तो मुझे वरदान दो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तो उसने उसको देखा, बोला कि आपके भाग्य में है ना संतान है ही नहीं, इसलिए मैं वरदान नहीं दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं दे, आशीर्वाद भी नहीं दे सकता क्योंकि भाग्य में है ही नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी था तो उसको मालूम पड़ता था। तो बहुत बहुत साधु पहुंचा हुआ था, मतलब सिद्धि वाला था, लेकिन उसने बोला मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। तो राजा को बहुत दर्द हुआ, राजा रोते रोते बाहर आया। वो वहां एक शिष्य था उसका, उसने राजा की आंखों में आंसू देख लिया, बोला क्या हो गया? बोला मुझे है ना तो बहुत काफी समय से इच्छा थी, संतान नहीं है, अभी हमारा वंश कैसे चलेगा, इसलिए मैं तो गुरुजी के पास आया लेकिन मुझे ऐसा बोल दिया। बोला गुरुजी नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी है ना उसके साथ रहते रहते सभी सिद्धियां सीख गया था। उसने बोला कि वो नहीं कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। तो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया कि अच्छा, बहुत ही खुश हो गया वो। तो बोला आप जो कहो ना वो मैं करूंगा, और मैं है ना तो आपको राज्य का आधा भाग भी दे दूंगा, लेकिन मैं अब जो भी आप कहोगे ना मैं करने के लिए तैयार। उसने बोला कि आपको संतान प्राप्ति होगी। फिर है ना तो वो राजा तो चला गया, उसके बाद शिष्य है ना वो तो अहंकार था ना थोड़ा, तो आया गुरु जी के पास कि देखो आपने जो नहीं आप जो नहीं कर सके है ना वो मैंने किया। उसने बोला कि उसके भाग्य में संतान है ही नहीं, लेकिन तुमने जो वरदान दिया है क्योंकि तू भी तो मेरा शिष्य है इसलिए तेरा वचन जो है ना अगर तेरा वचन ये हो जाएगा झूठा होगा तो मैं भी झूठा निकलूंगा, इसलिए तेरा वचन झूठा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुमने जो किया है तो उसको संतान तो प्राप्त ऐसे नहीं होगा, लेकिन तुझे ही उसका संतान बनना पड़ेगा, इसलिए अभी तूने मुझे जो बोला ना तुमको अभी बोला ना तो अभी तुमको मरना पड़ेगा और उसके पास शरण लेना पड़ेगा। तो कहता है बोला तो मरा, बोला ना उसने गुरु के आगे जाके, तो फिर वहां उसको संतान हो गया तो राजा खुश था, इतना खुश था, लेकिन बच्चा था ना वो छोटा था तो बहुत लालन पालन से उसको बहुत ही अच्छी रीति से किया, लेकिन जब ही दो साल का हुआ तीन साल का वो बोले नहीं, वो चुप एकदम चुप रहता था। उसने बोला था तू जिस दिन बोलेगा ना उस दिन मर जाएगा, इसलिए बोलता नहीं था वो, बोला ही नहीं। थोड़ा युवा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने बोला कि ये तो बोलता नहीं है, उसने ना हजार लोगों को बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया, इतने लोगों को हकीम को वैद्य को बुलाया कि अरे बच्चा को कोई बुलाए तो मैं उसको अपना राज्य का आधा भाग तो दे दूंगा, इसलिए कुछ भी करो लेकिन उसको बुलाओ। देश विदेश के जो भी वैद्य हकीम होते हैं ना उस समय तक तो सारे आए, कुछ होगा नहीं, हुआ नहीं। वो उसने बोला बच्चा बोलता नहीं है। बहुत लोगों को जितने लोग आते थे हजारों लोग उसके पास आते थे, कोई को कोई कोई न कोई ऐसे युक्ति लेके आता था, लेकिन बच्चा बोला नहीं, बोलता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में उसको अंगरक्षकों के साथ भेजा जंगल में, तो खेलने के लिए गए, राजा है तो बच्चे तो उसको शिकार करना खेलना सिखाते हैं ना, तो उसके साथ अंगरक्षक भी गए, तो वहां क्या हुआ कि झाड़ था ना उसके ऊपर दो पक्षी बैठे थे, एक पक्षी है ना वो आवाज कर रहा था तो शिकारी आया ना तो जिस जहां आवाज आता था ना वहां एक तीर लगाया तो मर गया, फिर दूसरा चुप था लेकिन वो जो नीचे गिर गया तो पक्षी था ना तो वो दूसरा पक्षी था ना वो अकेला वो भी बोलने लगा तो शिकारी को मालूम पड़ा यहां दूसरा भी है तो उसने उसको भी तीर लगा दिया, दोनों ने मतलब कि वहां नीचे गिर गए। तो इसने बोला तो मरा इसने बोला राजकुमार ने बोला तो मरा, तो है ना अंगरक्षक खुश हो गए कि अरे ये तो बोला बहुत अच्छा हो गया, तो जल्दी राजा जी को बुला के आए कि बच्चा बोलने लगा है। तो राजा जी आया कि बेटा बोलो, बेटा बोले नहीं, बहुत उसको बोला, इतना उसको उसके साथ इतना समय बिताया लेकिन बोला नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला, बोला ही नहीं। फिर क्या हुआ उन्होंने कहा कि अभी ये अंगरक्षक है ना झूठे हैं, ऐसे झूठे हैं कि उनको आधा राज्य चाहिए ना तो मिलकर के योजना बनाई है, इसलिए सबको फांसी पे चढ़ा दो। उसने जैसे फांसी पे चढ़ाने का फरमान कर दिया ना तो फिर वो बोला तो मरा। तो फिर राजा ने कहा कि एक बोला नहीं और बस एक ही शब्द बोलता है, बोला तो मरा और दूसरा कुछ बोलता ही नहीं है। तो उसने बोला कि तुम क्या बोलते हो, बोला कि देखो कि ये पक्षी था ना वो चुप था तब तक तो सेफ था, सलामत था, दूसरा भी बोला नहीं तब तक तो सलामत था, लेकिन शिकारी ने दोनों को मार दिया तो बोला तो मरा ना। ऐसे अंगरक्षक बिचारे जो आपको बोलने आए तो बोला तो मरा, इसलिए आपने फरमान कर दिया। अभी मैं है ना, मैं भी कोई आपका बेटा नहीं हूं, और जो गुरु था ना उसका शिष्य हूं, मुझे भी एक सजा मिली है कि मैं बोला था गुरु जी ने बोला था कि आपका संतान भाग्य में है ही नहीं, लेकिन मैंने है ना अहंकार बस आपको बोल दिया। और फिर गुरुजी जी के पास गया तो उसने बोला कि अभी तुमने जो किया है ना वो तेरे को ही भोगना पड़ेगा, इसलिए बोला कि तू जिस दिन बोलेगा ना उस दिन तू मर जाएगा। तो जिस दिन उसने उसी दम बोलने लगा तो उसको मोक्ष मिल गया। तो कहने का मतलब कि जहां जितना जैसा बोलना है ना उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा बोलेंगे मरना माना क्या है कि यहाँ मुसीबतें आती है ना। आप गलत जगह पे कोई ऐसी जगह पे बात करो तो कैसा होगा है? अभी एक मरण की सभा थी, उसमें एक नेता आया था, तो नेता को भाषण करने की बहुत ये होती है ना, तो उसने जब भाषण किया कि ये जो प्रसंग है ना वो आता रहे बढ़ता रहे और बहुत ही अच्छा, तो लोगों ने बोला क्या बोलता है, क्योंकि ये मृत्यु सभा थी उसमें जितना हो सके इतना अच्छा है बोलता है। तो लोगों ने बोला कि ये भाषण क्या करता है। तो हमको जहां जैसा जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे तो क्या होगा कि हमारी मतलब कि वैल्यू रहेगी है ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि कहते हैं कि जितना कम बोलते हैं उतनी हमारी शक्ति भी बढ़ती है। अभी चुप रहने का फायदा तो देखा कि चुप रहने से कितना फायदा होता है। भाई था वो बहुत चुप रहता था, कुछ हो गया तो चुप रहता, बोलता ही नहीं था, लेकिन जब बोलने लगा ना तो ऐसा क्योंकि आवाज नहीं निकलता था, और आवाज नहीं निकलता था हम तो इस प्रकार से बोलते थे ना जैसे वो कोई स्वाभाविक बोलना भूल ही गया था ऐसा बोलता था, और इशारा ऐसा करता था ना। और आज भी हमने देखा है कि बोलने से ज्यादा इशारा करता है, बहुत इशारा करता है। तो हमारा ऐसा भी ना हो कि हम चुप रहते रहते हमारी आवाज भी बंद हो जाए और हम ये भी ना कर सके। इसलिए बाबा कहते हैं कि बैलेंस बहुत जरूरी, हर बात में बैलेंस। अगर हम बैलेंस रखेंगे तो हम सफल भी हो जाएंगे, सेफ भी रहेंगे। कहते हैं जितना बोलते हैं ना हम सारे दिन में, हम चेक करो कि जितना बोलते हैं ना उसमें से 75% तो व्यर्थ ही होता है। आप अगर देखोगे तो हम जितना बोलते हैं उतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं। जब बच्चा है ना छोटा होता है ना, बोलना नहीं सीखता है तो उसको उसकी माँ परेशान हो जाती है, उसको पता नहीं जिंदगी भर ही बोलता रहेगा, इसलिए उसको इतना उसको क्या क्या। अभी एक बच्चा था, हम 3-4 साल तक बोला ही नहीं, उसका माँ पिता इतना परेशान, इधर डॉक्टर के पास जाएगा इधर डॉक्टर के पास जाएगा कि बच्चा बोलता नहीं है। तो डॉक्टर बहुत होशियार था, अनुभवी था, उसने बोला बोलेगा, क्योंकि जिंदगी भर बोलना ही है ना, बोलेगा आज नहीं तो कल बोलेगा, वो उसके इसमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने सब देख लिया, तकलीफ नहीं है कोई भी, उसकी जो ईश्वर पेट ये सब ठीक है, बोलेगा। लेकिन माता को इतना परेशान, डॉक्टर तो बोलता है लेकिन ऐसा थोड़ी 4 साल हो गए बोलता नहीं बच्चा, और 2 साल के बाद बच्चा बोलने लगा, चुप ही ना रहे जहां चाहे वहां। वो बच्चे को एक बार बोला कि तुम है ना तो अपने घर पे मेहमान आने वाले हैं, 4-5 साल का बच्चा हो गया, तो अभी तुम कुछ बोलना नहीं, और कहता है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उसको बोला कि तुम ऐसा कर स्कूल में चला जा, मेहमान भले आए लेकिन स्कूल में चला जा, और 10 बजे से वो आएगा ना 5 बजे तक स्कूल में होता है, तुम जा। मैंने आज मैं नहीं जाऊंगा, वो मेहमान आ रहा है ना, इसलिए अच्छा सा खाना बनेगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो उसको बोला, देखो इसकी मम्मी ने उसको बताया कि उसके लिए कुछ बोलना नहीं और इसके नाक के लिए बिल्कुल नहीं कुछ बोलना है, ऐसा बोलना बिल्कुल नहीं बोलने का तेरे को। बोला मम्मी नहीं बोलूंगा, तो इसके लिए खा लिया कि तू प्रॉमिस कर, अभी छोटा बच्चा 5 साल का, तो बोला कि मैं नहीं बोलूंगा इसका नाक के बिना, बिल्कुल नाक के बारे में कुछ नहीं बोलना है। लेकिन वो जैसे मेहमान है ना तो कहता मम्मी पप्पा, उसको नाक ही नहीं है, वो मम्मी पप्पा उसको नाक ही नहीं, वो तो बहुत बार बोलने लगा ऐसा। तो उसकी मम्मी ने, मम्मी तो उसको है ना तो मतलब कि सर्जरी कराई होगी तो मतलब तकलीफ थी उसको, तो कहते मम्मी मम्मी ऐसा तो मैंने देखा नहीं, इसका मुंह नाकी घड़ी घड़ी बोले वो, तो घड़ी घड़ी मेहमान के आगे जाके बोल देखो देखो। तो कहने का मतलब कि तो बेचारा मेहमान बड़ी बड़ा था वो, मतलब कहीं जाता ही नहीं था, उन लोगों ने बहुत अच्छी रीति से बुलाया था और बहुत ही इसके पोजीशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बच्चा एक बच्चा ऐसा बोले लेकिन उसको कैसा लगेगा, एक बार बोले तो ठीक है, इसको पकड़ के ले जाए तो बार बार आकर के बोले ये तो, तो इसलिए कहने का मतलब कि बोलना सीख गया तो कैसा बोलना सीख गया। तो इसलिए कहां बच्चों के साथ कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसे बोलना है, घर में कैसे बोलना है, पत्नी के साथ कैसा बोलना है, माँ बाप के साथ कैसा बोलना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, सबके साथ एक जैसा बोल भी नहीं सकते हैं। समझ करके बोलेंगे तो सभी जगह पे हम सफल हो जाएंगे, और जो आया वो बोलेंगे तो सभी जगह पे लोग कहेंगे इसको हम इसको सुनना चाहेंगे नहीं, तो हम ऐसा बोले जो हमारा सुनना चाहे लोग, है ना, इतना कम बोले इतना अच्छा बोले कि लोगों को ऐसा ना कर भाई चुप कर अभी बहुत बोल दिया, ऐसा भी कई बोलते हैं ना, ये भाई को ना बहनों बोलने की बहुत आदत है ऐसा बोलते है। इसलिए अच्छा बोलना है, जहां जैसी जरूरत है वैसा ही बोलना है, संयमित बोलना है, वाणी का संयम बहुत जरूरी है। ओम शांति।
सबको सोमान सत्कार से सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से सुखमय ये संसार होगा, मिलके